अध्याय 12 से लेकर 18 तक, 19 एक्चुअली, मगर आज का मुख्य मुद्दा ये है, विश्वासियों को यह सोचकर धोखा नहीं खाना चाहिए कि परमेश्वर उन्हें प्रलोभित करता है। विश्वासियों को यह सोचकर धोखा नहीं खाना चाहिए कि परमेश्वर उन्हें प्रलोभित करता, क्योंकि परमेश्वर विश्वासियों को अच्छी चीजें उदारता से देता है, क्योंकि प्रभु उनको, परमेश्वर उनको, विश्वासियों को अच्छी चीजें उदारता से देता है। क्या आपको कभी धोखा हुआ है? मेरा मतलब यह नहीं है कि कोई आपको धोखा दे रहा है या दे चुका है, मेरा मतलब यह है कि आप यह सोचकर खुद को धोखा दे रहे हैं कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी क्षमता आप में नहीं हो। उदाहरण के लिए, बड़े होने पर हमें अपनी क्षमताओं पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा होता है। हमें लगता है कि हम पूरे दुनिया को जीत सकते हैं। हम उन चीज़ों की सूची नहीं लेते कि हमें इसकी क्षमता है कि नहीं। हमें ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है जो विनाशकारी हो सकते हैं। मुझे अपने चाचा के साथ शर्त लगाना याद है। हम बंबई में रहते हैं और छत पर चाचा जी खड़े थे और मैं और मेरे दोस्त नीचे खड़े थे। हमने चाचा जी को बोला, चाचा जी आप ना ऊपर से कूद नहीं सकते, कुछ भी कर लो सुपरमैन की तरह आप ऊपर से कूद नहीं सकते। 15 फुट की ऊंचाई थी और नीचे फिर हमने कह दिया चाचा जी से, देखो ये 100 रुपये की पत्ती है भैया, तुम कूद जाओ, ये 100 रुपया आपका, ठीक है। चाचा जी ने कहा, नहीं भाई हम तो खुद जाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, सुपरमैन से सुपर तो हम हैं। तो मैंने कहा तू कूद जाओ। पीछे से उनकी बहन यानी कि मेरी मम्मी कह रही थी उनसे कि मत कर, पागल हो गया है, ऐसा मत कर, बच्चे है वो, बच्चे की बात मत सुनो। उन्हें कहा मेरे अंदर आत्मविश्वास है, मैं ये ज़रूर कर पाऊँगा। तो मेरे चाचा गंभीरता से सोचने लगे, निरीक्षण करने लगे, कर सकता हूँ ना, आसानी से कर सकता हूँ। तो ये चर्च के पहले हो रहा है, बुधवार के दिन बाइबल स्टडी के पहले। तो जाजी ने क्या कहा, हमने कहा देखो भाई 100 की पत्ती तुम्हारी, कूद जाओ। इतना आत्मविश्वास था हमारे चाचा के पास कि वो कूद गए और हम बच्चे देखकर दंग रह गए। कूद कर उन्होंने अपना पैर पकड़ लिया, आया चिल्लाने लगे। हम गए उनके पास, हमने क्या हुआ, कह हड्डी शायद टूट गई। हमने कहा ये लो 100 रुपया तुम्हारी, हड्डी का मरम्मत करा लो। तब से चाचा जी उनका देहांत हो गया बेचारे, लेकिन तब से वो ऐसे लंगड़ के चलते थे, हमारे वजह से, बच्चों की वजह से, अपने खुद का आत्मविश्वास के वजह से। देखिए भैया, हमारे आत्मा धोखा जो है वो बेहद खतरनाक होता है, विनाशकारी भी हो सकता है। एक यूट्यूबर भी था जो बिल्डिंग के ऊंचाई से ऐसे पकड़ कर बैठा था और यूट्यूब के वीडियो के लिए पकड़ के बैठा, गिर कर मर गया। तो ये इस प्रकार के जो आत्मविश्वास है शारीरिक रूप से हमें मार सकता है, मगर ऐसा भी आत्मविश्वास हो सकता है, आत्मा भरोसा, जो हमें आत्मिक रीति से मार दे अनंत काल के लिए। ये आत्मविश्वास हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। याकूब का किताब में याकूब जो है हमें इस आत्मा धोखा से बचाने के लिए ये किताब लिख रहा है। अगर इस किताब के ऊपर आप गौर करें तो ये सारे किताब का प्रमुख प्रथम विषय ये है कि हमारा विश्वास जो है ये सच्चा विश्वास हो, और अगर हमारा सच्चा विश्वास क्रिस्ट यीशु के ऊपर है तो वह एक उद्देश्यपूर्ण फलदायक विश्वास होगा, निकम्मा विश्वास नहीं होगा। ये हमारा विश्वास हमने उत्पन्न नहीं किया, ये विश्वास प्रभु ने हमें दिया है। और अगर ये विश्वास सही है, असली है, तो ये विश्वास फलदायक होगा। यही है सच्चे विश्वास का प्रभाव, सच्चे विश्वास का असलियत। और ये वो दूसरे अध्याय के दूसरे खंड के 14वें वचन में कहता है, क्या कहता है, मेरे भाइयों यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, देखा आत्मविश्वास, देखा आपने, देखा आत्मविश्वास इस व्यक्ति के अंदर, कह रहा है कि मेरे में विश्वास है, पर वह कर्म न करता हो, मतलब विश्वास का फल नहीं लाता हो। गौर कीजिए, वो ये नहीं कह रहा है कि विश्वास के लिए फल ला रहे, विश्वास है इसीलिए फल ला रहा है, विश्वास का स्वभाव ही वैसा है, तो इससे क्या लाभ कहता है? तो कोई ऐसा कह रहा है कि विश्वास है लेकिन फल नहीं, तो भाई इसका क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? और उत्तर इसका क्या होगा? नहीं कर सकता। अगर आपका विश्वास फल नहीं लाता, आपका विश्वास फल नहीं लाता, तो ये अंध में आपको उद्धार, क्योंकि आपका विश्वास खोखला है, आपका विश्वास सच्चा विश्वास नहीं है। तो ये है प्रथम मुद्दा सारे याकूब के किताब का, और वो हमें अनेक खंडों में परीक्षण करने के लिए कह रहा है। आत्म परीक्षण, आत्मविश्वास नहीं, आत्म परीक्षण करने के लिए कह रहा है कि भाई अपने विश्वास को जांच लो, वचन के नीचे अपने विश्वास को रखो और देखो कि वचन अनुसार क्या आपका विश्वास सही है कि नहीं। आपके आत्मविश्वास के अनुसार नहीं, वचन के आत्मविश्वास के, सुसमाचार के आधार पर क्या आपका विश्वास सही है कि नहीं, इसका थोड़ा जांच पड़ताल कर लो। और हमारे लिए ये क्यों कह रहा है याकूब? क्योंकि वो चाहता है कि हमारा विश्वास फलदायक बने, कि हम क्रिस्ट के लिए जिए, क्योंकि क्रिस्ट ने हमारे लिए अपना खुद का जीवन बलिदान कर दिया, हमारे पापों से हमें छुड़ाया। उस पाप में आप दौड़ो मत, क्रिस्ट ने आपको छुड़ा दिया। अविश्वासियों के साथ मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं आज सवेरे। हम ख्रिस्टी ये विश्वास करते हैं कि क्रिस्ट यीशु मसीह हमारे सच्चे जीवित परमेश्वर है, प्रभु है, कि हम पापी हैं, हम पापी जन हैं, मगर प्रभु यीशु क्रिस्ट ने अपने दया उदारता से अपने महिमा के लिए हम पापी जन को छुड़ाया, हमारे पाप से स्वतंत्र किया, पाप के गुलामी से हमें अपने खुद के जीवन का बलिदान देते हुए, अपने शरीर को तोड़ते हुए, और आज ही हमने मेज में भाग लिया, अपने लहू को बहाकर इस भ्रष्ट व्यक्ति को यीशु क्रिस्ट ने छुड़ा लिया अपने लिए, अपने महिमा के लिए। और यदि आप पाप से मुक्ति चाहते हो, केवल केवल यीशु मसीह के द्वारा ही आपको प्राप्त हो सकता है। आप शायद अपने कर्मों से पाप से अपने आप को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर केवल यीशु मसीह के उस बलिदान से हम पाप से छुड़ा दिया जा सकते हैं। केवल यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और यीशु हमसे यहाँ ये सत्य अपने वचन से कहता है, पश्चाताप करे, उनके ऊपर विश्वास करे, यीशु एकमात्र प्रभु है। हम जो है, इस शहर में बोलना जरूरी है, हम क्रिस्ट जो है, क्रिस्ट यीशु में सच्चे संत है, संत जन हम है, क्योंकि हम क्रिस्ट यीशु में छुड़ाए दिए गए संत लोग हैं। तो याकूब जो है वो पहले से लेकर 12 पहले खंड के 12 से 19 में प्रलोभन के ऊपर ध्यान दे रहा है, ठीक है, प्रलोभन के ऊपर ध्यान दे। तो हम जो क्रिस्ट में उद्धार पाए हुए हैं, हम पाप से गुजरते हैं, हम पाप करते हैं, परीक्षा है तो आते ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि क्रिस्टी, अगर आप क्रिस्टी है तो आप या तो परीक्षण से निकल रहे हैं, या फिर परीक्षण से जूझ रहे हैं, या फिर परीक्षण में प्रवेश करने वाले हैं बहुत ही जल्द। हम परीक्षण से मुक्ति नहीं पाते, उद्धार हमारा पाप से है, परीक्षण से नहीं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप परीक्षा से गुजरोगे, कठिन परिस्थितियों से गुजरोगे, मगर कठिन परिस्थितियां जो है वो प्रलोभन के लिए एक मौका बन जाता है, पाप के लिए एक मौका बन जाता है। और इसके बारे में याकूब किताब पहले अध्याय 12 से 19 में, तो अगर आप गौर करें तो बारंबार इस किताब में याकूब ये शब्द का इस वाक्य का इस्तेमाल करता है, हे मेरे प्रिय भाइयों। हम इसे पहले अध्याय के दूसरे वचन में देखते हैं, पहले खंड के दूसरे वचन में, हे मेरे प्रिय भाइयों। फिर हम इसे पहले खंड के 16वें वचन में पढ़ते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों। फिर आप उसे वापसी 19वें वचन में पढ़ते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों। फिर दूसरा खंड के पहले अध्याय में, पहले वचन में, हे मेरे प्रिय भाइयों। फिर दूसरे खंड के 14वें वचन में, हे मेरे प्रिय भाइयों। फिर तीसरे खंड के पहले वचन में, हे मेरे प्रिय भाइयों। फिर चौथे खंड में आखिर में आता है 11 वचन, हे भाइयों। फिर आता है 5वां खंड में, हे भाइयों। फिर आखिर में 5वें खंड के 19वां वचन में, हे मेरे भाइयों। तो ये जो वाक्य है ये सूचित करता है, ये चिन्ह है, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर एक नई बात चल रही है, मगर इसका जोड़ हमें प्रथम याकूब के किताब के प्रथम बात से करना है। और याकूब का किताब के प्राथमिक विषय क्या है कि हम विश्वासी हमारे सच्चे विश्वास के फल दिखाए। और हे मेरे प्रिय भाइयों, ये चिन्हित करता है कि यही है, यही परीक्षण है जिसके द्वारा आप अपने सच्चे विश्वास का परीक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। और नाना प्रकार से परीक्षण देते हैं, मगर यहाँ पर खासकर 12 से लेकर 19वां वचन तक वो हमारे प्रलोभन से जुड़ा हुआ जो रिश्ता है उसके ऊपर गौर करते हुए हमें कह रहा है कि आप परीक्षण करो, निरीक्षण करो अपने आप का कि प्रलोभन की तरफ आपका क्या रवैया है, किस प्रकार से आप उसके तरफ आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो एक विश्वासी के जीवन में अक्सर बाइबल के लेखक हमें बताते हैं कि लड़ाई जो है ना, जो हमारी लड़ाई है, युद्ध है, बाहर से नहीं है। जब हम अपने जीवन में प्रलोभन से गुजरते हैं, प्रलोभन का सामना करते हैं, तो मैं ये पता करना ज़रूरी है कि जो लड़ाई है, जो परीक्षण है, जो प्रलोभन है, वो हमारे अंदर की लड़ाई से जुड़ी हुई है। समस्या जो है ये बाहर नहीं है, समस्या जो है वो अंदर है। और यहाँ पर 16 वचन के ओर गौर कीजिए, कह रहा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। जब हम हमारे परिस्थितियों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, ना कि हमारे खुद के ऊपर, हमारे पापों के लिए हम बाहर के परिस्थितियों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, ना कि हमारे खुद के हृदय के ऊपर, तब हम धोखे में भरते हैं। तो ये जो 16वां वचन है, ये पहले 12 से लेकर 15 वचन के को लिंक करता है, जोड़ता है 17 से लेकर 19वां वचन तक। तो ये पूरा जो वचन है ये धोखे में न रहे इसके बारे में हमें कह रहा है। धोखे में मत रहे। धोखे से हम कैसे दूर रह सकते हैं? वचन के द्वारा, केवल वचन के द्वारा। तो पहला क्या कह रहा है कि धोखे से बचना है तो भैया ये समझ लो कि प्रभु कौन है, प्रभु कौन है, इसको ये समझ लो। और प्रभु के ऐसे मत समझना कि भाई मेरे हिसाब से प्रभु ऐसे होंगे, मेरे हिसाब से प्रभु ऐसे होंगे, नहीं। वचन क्या कह रहा है प्रभु के बारे में, प्रभु स्वयं अपनी बारे में क्या कह रहा है, इसके ऊपर हमें ध्यान लगाना है। फिर आगे के जो वचन है हमें कहता है, हमें ये कहता है कि प्रभु ने हमारे लिए किया क्या है और प्रभु हमारे लिए करते क्या नहीं करते, इसके बारे में ध्यान देते 13 से लेकर 15 वचन तक। तो 13 से लेकर 15 वचन तक प्रभु क्या नहीं करते, और 17 से लेकर 18 या 19 वचन प्रभु क्या करते हैं हमारे लिए, ठीक है। और इसके द्वारा हम निरीक्षण करें, परीक्षण करें कि क्या हमारा विश्वास सच्चा विश्वास है कि नहीं। पहली बात तो इस धोखे में न रहिए कि प्रभु आपका परीक्षण करके आपको गिराना चाहते हैं, आपको हराना चाहते हैं। इस धोखे में मत रहिए, कह रहे वो धोखा न खाओ है मेरे प्यारे भाइयों। और इसका शुरुआत 13 वचन से कहता है कि प्रभु जो है आपको परीक्षा में नहीं डालता। देखिए 13 वचन, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, ठीक है। आपकी जो परीक्षा है ना वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अच्छा, ये जो शब्द है परीक्षा, ये शब्द इस संदर्भ में इसका अनुवाद दरअसल प्रलोभन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप पहले अध्याय के दूसरा वचन देखे, तो हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, कहता है कि नहीं, ठीक है। तो यही शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया है, इसलिए चंद बाइबलों में इसको परीक्षण के रूप में अनुवाद किया है। किंतु इसका सही अनुवाद 13 वचन में संदर्भ के अनुसार परीक्षण प्रलोभन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कई बार हमारी परीक्षाएं जो है जीवन में प्रलोभन का उत्पादन करती है, प्रलोभन को लाते हैं हमारे जीवन में। जब आप कठिन परिस्थितियों से गुजरते हो, नाना प्रकार के कठिन परिस्थितियों से गुजरते हो, तो प्रलोभन आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। आपके वो जो कठिनाइयां हैं आपके जीवन को प्रलोभन ला, जीवन में प्रलोभन ला सकता है। देखिए ये जो विश्वासी है ये लोग भी परीक्षण से गुजर रहे थे। देखिए पहला खंड का पहला वचन कह रहे, परमेश्वर की ओर प्रभु मसीह के दास याकूब की ओर से
उन बाहरों गोत्रों को जो तित्तर बित्तर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। मतलब ये लोग, ये जो लोग हैं, ये तित्तर बित्तर हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, ठीक है, कई किसी कारणवश। और ये हो सकता है कि ये बेघर इसलिए हो चुके हैं क्योंकि वे क्रिश्चियन हैं। सुन लीजिए क्रिश्चियन भाइयों बहनों, आप परीक्षण से भागने की कोशिश न करें। परीक्षाएं जरूर आएंगे, नाना प्रकार के परीक्षाएं। आज जब हर्षित भाई प्रार्थना कर रहे थे, कई लोगों के लिए प्रार्थना कर, जो हाल ही में कठिन परिस्थितियों से गए, कठिन परीक्षाओं से गुजरे, और ये कलीसिया का इतिहास भी हमें बताता है कि कठिन परिस्थितियों से क्रिश्चियों को गुजरना पड़ेगा, अनगिनत परिस्थितियों से, परीक्षणों से क्रिश्चियों को गुजरना पड़ेगा। जो भाई, जो लोग ये कहते आपसे कि क्रिस्ट के पास है सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो लोग दरअसल क्रिस्ट के निकट ही नहीं है। क्योंकि जो लोग क्रिस्ट के निकट है, क्रिस्ट के जो जो शत्रु है वो उनके शत्रु बन जाते हैं, ठीक है। सुसमाचार से जो प्रेम करते हैं, क्रिस्ट से जो प्रेम करते हैं, वे लोग जो है क्रिस्ट के जो शत्रु है उनके शत्रु बन जाते हैं। तो परीक्षाएं तो जीवन में आने ही हैं, और प्रभु भी हमारे जीवन में परीक्षाएं लाते हैं, ठीक है। लेकिन कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में प्रलोभन को उत्पादन कर सकता है, पाप के ओर ले जा सकता है। कहता है कि परीक्षा, जब किसी की परीक्षा हो तो ये जो परीक्षा है ये प्रलोभन है। आगे देखिए क्या कह रहा है। तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। तो क्या होगा, क्या होता है कभी कभी जीवन में, जब परीक्षा आते हैं और वो प्रलोभन को मौका देता है, तो हम तुरंत प्रभु को ब्लेम करते हैं, प्रभु के ऊपर दोष लगाते। देखिए आदम ने, हमारे पहले पिता ने भी यही किया, ठीक है। प्रभु ने इतना अच्छा संसार बनाया और एक उसको औरत भी दे दी, अकेला था बेचारा, क्या इसको बीवी दे दिया, ठीक है। और फिर दोनों पाप में पड़ गए। क्यों? आदम बेचारा सो रहा था, बीवी के सुन के उसने फल खा ली, खुद के प्रलोभन में पड़कर फल खा ली। फल खाने के बाद देखिए, जब 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 महिला को बनाया गया था तो आदम कविताएं लिख रहा था, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ठीक है। और जैसे ही वो प्रलोभन में पड़ गया, पाप में पड़ गया, ये जो महिला है जो आशीषमान थी उसके लिए, वो शापित हो गई। ये कैसी बीवी दे दी तुमने प्रभु, इसी के तो वजह से हम प्रलोभन में पड़ गए। हम तो अकेले अच्छे खासे थे, संसार का आनंद उठा रहे थे, फल खा रहे थे, मजा उठा रहे, नींद भी अच्छी आ रही थी हमें। अब ये नींद बिगाड़ दी इसने, पाप में हमें डाल दिया। तो प्रभु महिला के पास गए, बोले क्या तुमने ऐसे क्यों किया? उसने कहा अरे वो सर्प जिसने आप ही ने तो बनाया है सबको, वो सर्प जिसके आपने बनाया है उस सर्प ने मुझे फंसा दिया। देखिए उन्होंने दोनों ने क्या किया, बाहर के परिस्थितियों के ऊपर गौर किया, ठीक है। फल का होना गलत नहीं था, चल लो ऐसे सोचते हैं कि भैया फल क्यों रखा प्रभु ने, फल नहीं रखते तो ये लोग पाप में गिरते नहीं। मगर फल एक परीक्षण था उनके लिए, और प्रभु उनको गिराने के लिए फल नहीं रखे, ठीक है, गिरा। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, फल को आकर्षित समझा। भी ये भी सोच लिए एक बार, कई बार दिन में, कई बार, क्योंकि फल बाग के बीच में था, दिन में कई बार ये जो मानव और महिला आदम हुआ थे वो फल को देखे हैं, कई बार देखे होंगे, गौर किए होंगे, मगर सोचे कि भैया इसको खाना नहीं है। क्यों? प्रभु ने कह दिया नहीं खाना तो नहीं खाएंगे। किंतु परीक्षण भी ऐसा ही होता है, परीक्षण कई बार आता है जीवन में, कई बार आता है, और हम जीतते भी है परीक्षण से, लेकिन खुद के बलबूते पे उस परीक्षण से विजय पाने की वो प्राप्त किए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, एक दिन वो फल अच्छा लगने लगा, भाई कितना सुंदर है, ऐसा तो नहीं कि सुंदर फल हमसे प्रभु रख रहे हैं। अरे बाग के और कई फल थे, मगर यही फल उनके लिए आकर्षण का मुद्दा बनने लगा। और उसके बाद जब वो फंसे तो दूसरों को दोष लगाने लगे कि भाई आपके वजह से, इसलिए कहता है कि तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। देखिए हम तो समझदार भ्रष्ट लोग हैं कि नहीं, डायरेक्ट हम प्रभु को दोष तो नहीं लगा सकते क्योंकि क्रिस्ट है भैया, तो हम इनडायरेक्ट दोष लगाएंगे कि अरे परिस्थितियां ऐसे नहीं होती तो नहीं करता, वो लड़की आती नहीं तो मैं पाप नहीं करता, अकेला रूम में बैठा नहीं तो मैं पाप नहीं करता, पैसे होते तो मैं पाप नहीं करता। हमारे जो भ्रष्ट बुद्धि है, भ्रष्ट इस प्रकार के भ्रष्ट क्रियाओं में हमें ले जाता। हमें स्वयं ये याद रखना है कि प्रभु हमें कभी भी प्रलोभन में नहीं डालते हैं। प्रभु के बारे में यह गलत सोच है कि प्रभु हमें प्रलोभन में डालकर फंसाना चाहते हैं। जैसे कि शेर को फंसाते हैं ना, जाली लगाकर एक 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 होल बना के जैसे शेर को फंसाने की कोशिश करते हैं, वैसे हमें लगता है प्रभु भी हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु कभी हमें फंसाते नहीं है, परीक्षण में जरूर डालते हैं, कठिन वेदनाओं से जरूर गुजरेंगे हम, और प्रभु हमें वहां पर डालते हैं। मगर वहां पर डालने का कारण हमें ये देखिए, पहले 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 खंड के तीसरे वचन में बताते हैं, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास से परखे जाने से, देखिए धीरज उत्पन्न होगा। कठिन परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं तो विश्वास की परीक्षण हो रही है, हमारे विश्वास की। और जब हम दृढ़ रहते हैं ना कठिन परिस्थितियों के बावजूद, तो हम में धीरज उत्पन्न होता है, हम दृढ़ बनते हैं प्रभु में। ये जरिया है परीक्षण, आपको ख्रीष्ट के जैसे बनाने का जरिया है। आगे देखिए चौथा वचन, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। मतलब कोई लोग तो आधा ही काम करने देते हैं धीरज को, थोड़ा जो हमारा ऐसा जमाना आ गया भैया, पीछे फैन नहीं चल रहा, वेदनाएं भैया, वेदना कठिनाइयां आ रही है जीवन में, फैन नहीं चल रहा भैया, क्या बताए, पसीना छूट छूट, हम थक गए इसलिए हम कलीसिया नहीं आ पा रहे। भाई बैठो घर पे भाई, छोटी छोटी बात वेदनाएं बन गए हमारे लिए। देखिए, और इसका अनुवाद हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने आप के बारे में कुछ ज्यादा ही उच्चा सोचा। हम सभी सचिन तेंदुलकर है भैया, सब विराट कोहली, हमारा जीवन सबसे बेहतर, हम सबसे बेहतर, हम भ्रष्ट लोग है, हम नर्क के योग्य है, हम कुछ भी नहीं है भैया, शून्य है हम क्रिस्ट यीशु के अलावा, समझ रहे आप। तो जब हम प्रलोभन में पड़ते हैं, दोष न लगाए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभु के ऊपर दोष न लगाए, क्यों? दो कारण देते, देखिए 14-13 वचन, दो कारण देते क्यों नहीं करना है प्रभु को, दोष क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि न तो बुरे बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अच्छे हैं। पहला कारण, बुरी बातों का इस्तेमाल करके परीक्षा प्रभु आपका कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु अच्छे हैं। ख्रीष्ट में हमें प्रभु की इच्छा अच्छाई चित्रित होती है। भैया कितना भ्रष्ट है, पाप में डूबे हुए थे हम, जिस प्रभु ने हमें श्वास दिया उसी श्वास से हम उनको खंडित कर रहे हैं, उसी श्वास से उनको गाली दे रहे थे कि भैया ये कैसे जीवन दे दिया तुमने। मगर हमें प्रभु ने दूर नहीं रखा, अपने उदारता से, अपने करुणा से, अपने अनुग्रह से, जो हमें वो रोज देते हैं उदारता से देते हैं, हमें उन्होंने अपने निकट लाया। और जो पाप की भरपाई थी पूरी तरह से एक ही बार भर दिया। जो लोग उनके शत्रु थे, जो लोगों ने कहा, जिन लोगों ने कहा अरे हमें बरबस दो, इनको तो आप क्रूस पर ही चढ़ा दो भैया, इनका सोसाइटी में होना अच्छा नहीं होगा, उन्हीं लोगों को उन्होंने अपने निकट लिया। प्रभु अच्छे हैं। परीक्षणों के समय में हम ये भूल जाते हैं, परीक्षणों के समय में प्रभु के बारे में गलत अनुवाद निकालना शुरू करते कि प्रभु हमसे अगर प्रेम करते ना तो लड़की मिल जाती हमें, यार 35 साल के हो गए अभी तक लड़की नहीं आई, लड़की दे दो प्रभु अगर आप प्रेम करते हो तो, प्रभु प्रेम करते ना तो पैसे हो जाते, कर जा जाकर 1000 रुपया है बैंक में, क्या होगा 1000 से आजकल, प्रेम तो करते हो ना प्रभु तो पैसे दे दो। देखिए हम स्वार्थी लोग, भ्रष्ट लोगों को प्रभु ने हमें प्रभु ने छुड़ाया है। और प्रभु कहते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा ही करूंगा तुम्हारे लिए। ये कितनी सुंदर बात है कि नहीं, क्रिश्चियों के लिए प्रभु हर बार अच्छा ही करता है, प्रभु कभी बुरा नहीं। उसकी अच्छाई के बारे में 17 और 18 वचन में देखेंगे। दूसरा कारण, और न वही किसी की परीक्षा आप करता है, प्रभु अपने आप में किसी को प्रलोभन में डालता नहीं है। दरअसल अगर पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय और 13 वचन में आ जाए तो परीक्षा में जब हम पढ़ते हैं ना, प्रभु इतने अच्छे हैं कि उस परीक्षा से निकलने का मौका भी देते हैं। यूसुफ की कहानी पता है ना, यूसुफ की कहानी कैसे वो फंस गया था, मगर मौका मिला उसे भागने के लिए, भाग गया, दौड़ गया। वहां पर वो सोचने लगा कि अभी क्या करूं, कैसे इस परीक्षा, प्रभु कितनी बड़ी परीक्षा दे दी, इतनी सुंदर महिला मुझे बुला रही है, क्या करूं अभी मैं। ऐसे नहीं कहा उसने, तुरंत भाग गया वहां से। जब प्रभु परीक्षा लाते हैं, प्रलोभन लाते हैं, परीक्षा लाते हैं, तो वहां से निकलने का जरिया भी बताते हमें कि ये देखो भाई, भाग जाओ यहां से, बच के रहो यहां से, इतने अच्छे हमारे प्रभु। तो इन दो कारणों की वजह से हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि प्रभु हमें परीक्षा में डालता है। तो कहां से आता प्रलोभन, देखिए 14 वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। देखा कहां से आता है परीक्षा, प्रलोभन कहां से आता है, अरे हम ही बहुत ही जीनियस भ्रष्ट है, हमारे ही अंदर से आता है, हमारे ही मन से आता है प्रलोभन, हमारे ही इच्छाओं से आता है प्रलोभन। और दो, और चाहिए हमें, संतुष्ट नहीं हमें, और दो। देखिए प्रलोभन इसी तरह काम करता है हर बार हर व्यक्ति के लिए, चाहे आप जितना भी क्रिस्ट के निकट हो या दूर, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे, सभी लोग इसी प्रकार के प्रलोभन से गुजरते हैं, इसी प्रकार के प्रलोभन से हर एक गुजरता है। और प्रलोभन हर बार इसी तरह काम करता है, इसी तरह कैसा काम करता है, देखिए अपनी अभिलाषा से खींच कर। पहली बात तो प्रलोभन हमें खींच ले आता है। पाप हम क्यों करते हैं भैया, अच्छा लगता है। कई बार पाप में जब लोग पकड़ते हमें तो हम कहते कैसे हो गया, हमसे मालूम नहीं। ये पुराने नियम का हमें एक कहानी याद आता है, मूसा भाई 5-10 मिनट गिरे, ऊपर ऊपर क्या चला गया, नीचे वो लोगों ने मूर्ति पूजा करने शुरू कर दी। जब मूसा नीचे आता पूछता क्या हो गया भैया, क्या कर रहे हो तुम, अहरोन का जवाब अच्छा लगता, मजेदार लगता, क्या मालूम भाई हमने तो सोना डाल दिया आग में, ये आ गया, और ये आने के बाद हम आरा हमने हमको लगा प्रभु ने दे, हमने आराधना करना शुरू कर दिया। यही होता है जब बच्चों को जब हम कहते चॉकलेट मत खा भैया, चॉकलेट मत खा, अंदर आते तो पूरे मुंह पे चॉकलेट, पूछते क्या हो गया, क्या मालूम, अरे मुंह पे चॉकलेट दिखाई दे रहा है, कैसे आया मालूम नहीं मुझे। हमें दोष मत लगाओ, आप ही का आपने क्यों चॉकलेट लगा दिया वहां पे, आपको मालूम नहीं हम प्रलोभित होते हैं चॉकलेट से, आप ही का गलती है। देखिए हम क्या करते हैं, हमें हम दोष लगाते हैं दूसरे के ऊपर, ये नहीं जानते कि खींच ले आती है अभिलाषा, और वापस खींचने के बाद और क्या करती है, और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। तो अभिलाषा में हम खींच ही नहीं जाते, हम उसमें फंस जाते हैं। कहते हैं ना कि यार एक बार देख लिया तो भाग सकते हैं, मगर ये दूसरी बार जब देखते हैं ना तब फंस जाते हैं। यहां पर मछुआरे का एक चित्रण दिया हमें, कैसे मछुआरे मछलियों को कैसे पकड़ते हैं, राइट, वो अंदर डालते हैं छड़ी के साथ अंदर डालते हैं, फिर मच्छी आते हैं, तो कीड़ा है भाई, कीड़ा है, अच्छा लग रहा है कीड़ा, भाई आजा तू भी आजा खा ले मेरे साथ, अच्छा लग रहा है कीड़ा, जाता है मच्छी, बड़े से बड़े मच्छी, शानदार मछलियां, इतने बुद्धू, और बड़े से बड़े मछुआरा, शानदार मछुआरे, सबसे बड़े धोखेबाज, क्यों, धोखा से इनको फंसाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो 16 वचन में धोखा ही कहता है कि नहीं। तो मच्छी क्या करता है, चलो जाते खाते खाते, और फिर मछुआरा उन्हें बाहर ले आता है, और मछली ऐसा, अरे क्या हो गया, हमने तो कीड़ा खा लिया, हमने श्राधन बनाएंगे, बिरयानी खाएंगे, आज तो ये हमारी बिरयानी बनाएंगे। ऐसा ही होता है परीक्षण में, हम उसमें गूंज जाते हैं, पड़ जाते हैं उसमें, खींच ले आते हैं हमें परीक्षण, ऐसा होता है परीक्षण। फिर क्या होता है, फिर अभिलाषा वो जो हमारी अंदर की अभिलाषा है ना कृष्ण के खिलाफ, गर्भवती होकर पाप को जानती है। देखा पाप का कैसा जन्म हुआ, अभिलाषा में खींचकर पाप में पड़ा देती है। फिर क्या होता है, पाप में जब हम पड़ जाते हैं ना, ये दुख भरी बात है, तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। सावधान रहिए, प्रलोभन का यही तरीका है हर बार। अब कई बार ये तुरंत हो जाता है, ये तुरंत हो जाता तो हमें लगता है तुरंत होता है, इसलिए हम बिना सोचे समझे कर बैठे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम सोच समझ कर पाप करते हैं। हम रोमियो किताब में कहते हैं कि हम आविष्कारी है पाप का, नए नए आविष्कार निकालते हैं पाप के हम। भैया तुम ऐसे भी क्रिएटिविटी निकालते हैं पाप में, इतने भ्रष्ट हैं हम, है कि नहीं, हम सभी। तो प्रभु हमें पाप में नहीं डालते, प्रभु करते क्या है, देखिए 17 वचन में, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है। तो दान आ रहा है देखो ऊपर से, प्रलोभन में आपको डालकर फंसाने की प्रभु कोशिश नहीं कर रहे, ऊपर से दान दे रहे। और दान के दो चित्रण दे रहे हैं यहां पर, क्या है, अच्छा और उत्तम। प्रभु हर बार अच्छा दान देता है, उत्तम दान देता है हर बार। आप कहोगे परीक्षा जब जिंदगी में आती है, दुख संकट क्लेश जब जिंदगी में आते हैं, तो ये कैसा उत्तम हुआ, ये कैसा अच्छा हुआ। अरे चूंकि उसका नतीजा क्रिस्ट के जैसे बनाना है, आई बात समझ में, कि आपके जीवन में प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हम दूर भागेंगे, लेकिन हमें प्रभु वापिस खींच के ले आएंगे अपने पास, अगर हम सच्चे क्रिस्ट है तो। और उनका जो कार्य है ना आपके जीवन में क्रिस्ट के जैसे बनाने का काम, वो कभी नहीं, वो असफल कभी नहीं होने देंगे, ये जरूर सफल होगा, जरूर सफल होगा। हम सभी एक दिन पाप से ऐसे गूंजेंगे नहीं, जब क्रिस्ट को हम देखेंगे तो पाप से गूंजना बंद, पूरी तरह से क्रिस्ट के जैसे बन जाएंगे। मगर आज भी ये क्षमता दिया है पवित्र आत्मा के अधीन में होकर, क्रिस्ट के बलिदान के वजह से पाप से लड़ने का क्षमता हमें दिया है। हम युद्ध में है, युद्ध बाहर नहीं अंदर है, हमारे अंदर है, क्योंकि हमारा भ्रष्ट जो 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 शरीर है, भ्रष्ट जो सोच है, वो अभी भी हमारे साथ ही। भैया पैसा होता तो अच्छा होता है कि नहीं, एक दो गाड़ी होती तो अच्छी होती, ये भ्रष्ट सोच हमें वापस अपने क्रिस्ट के पीछे हो रहे हो, क्या कर रहे हैं आपके लिए क्रिस्ट, ये ऐसे ताने मारते हैं हमें। और शैतान का यही रवैया है। पेतरस में शैतान का कार्य के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो ढूंढ रहा है भैया किसे मैं फंसाऊं और किसे मैं खा लूं, नोच लूं। शैतान चाहता है कि आप गिर जाओ, आपका शरीर चाहता है प्रलोभन में पड़ जाओ, लेकिन ख्रिस्ट हर बार आपको उससे छुड़ाने की क्षमता रखते हैं, और आपको छुड़ाए भी हैं, उन्होंने आपको उद्धार दिया। तो ख्रिस्ट अच्छे वरदान देते हैं, उत्तम दान देते हैं। और देखिए आगे क्या लिखा, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ सकती है। मतलब क्या, ये जो दान है ना, ये पिता से आती है, जो ज्योति का पिता है। और देखिए क्या कैसा दान देता है, कभी ना बदलने वाला। अरे लोग बदल जाएंगे, लेकिन हमारे प्रभु कभी नहीं बदलेंगे। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही प्रभु है, एक जैसे ही प्रभु है, कभी ना बदलने वाला प्रभु, कभी ना डगमगाने वाला प्रभु। उनके ऊपर आप निरंतर निर्भर हो सकते हो, निरंतर उनके और दौड़ सकते हो, और उनकी वो कभी नहीं बदलेंगे। 18 वचन देखिए क्या दान दिया है, देखिए 18 वचन, उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। वचन सुसमाचार के द्वारा मरे हुए लोगों को यीशु के द्वारा जिला दिया गया है। अरे जब इतना अच्छा वरदान प्रभु ने हमें दिया है, तो प्रलोभन में काहे फंसाएंगे, हमें उद्धार दिया है। जब हम भ्रष्ट थे तो हमें छुड़ा लिया है, तो काहे हमें प्रलोभन में फंसाएंगे। हमें तो अच्छे अच्छे चीजें देते हैं प्रभु, अच्छे वरदाने देते, खासकर क्रिस्ट को हमें दे दिया। देखिए 12 वचन में जब कहते हैं ना कि हमें मुकुट मिलेगा, हमें क्रिस्ट दिया है प्रभु ने, क्रिस्ट दिया है प्रभु ने, कभी ना डगमगाने वाला क्रिस्ट दिया है प्रभु ने। अरे अच्छे चीजें कभी भी प्रभु नहीं डाल रखेंगे आपसे। आपको लगता है कि क्रिस्ट संतुष्ट कर पाएंगे, नहीं, क्रिस्ट के जैसे आपको कुछ भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। केवल कृष्ण हमको संतुष्ट कर सकते हैं। तो प्रभु अच्छे वरदान देते, अच्छे वस्तुएं देते, वचन के द्वारा हमें उद्धार देते हैं। और देखिए आगे क्या लिखा है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तु में से एक प्रकार के प्रथम, देखिए फल हो। तो ऐसे ऐसे भी सोच ना रखे भैया, हो गया उद्धार, अभी चल रहे हम, स्वर्ग तो जाना ही है, तो पार्टी कर ले, मजा उड़ाए। नहीं, ये उद्धार क्यों दिया आपको, ताकि आप कृष्ण जीवन को इस दुनिया में जिए, उनके आधार पर, उनके ऊपर निर्भर होते हुए इस जीवन में कृष्ण के लिए जिए और फल लाए। ये है असली उद्धार, सही उद्धार। और ये उद्धार हमें एक वरदान के रूप में मिला है, हमारे योग्यता की वजह से नहीं, किंतु उनके अनुग्रह और उनके दया के कारण। इतने अच्छे प्रभु है हमारे, इतने सुंदर प्रभु है हमारे, हमारे साथ है, हमारी बातें सुनते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना का उत्तर देते हैं, हमें जिलाते हैं, मरे हुए से जिलाते हैं। क्यों? अच्छा, किसी दबाव में आकर हमें उद्धार दिया है क्या प्रभु ने, कि भाई किसी ने कहा है, कह लिया कि हमारा बेटा इसको ले लो, ले लो, जैसे स्कूल में करते हैं ना, स्कूल में भैया ये विधायक का बेटा है ले लो, बड़े भाई का बेटा है ले लो। नहीं नहीं, प्रभु बिना किसी दबाव के, स्व इच्छा के साथ, पूरे होश आवाज में हमें चुना है। हम में कोई योग्यता नहीं है, कभी होगा भी नहीं, उनके उदारता, उनके अनुग्रह की वजह से हमें चुना। इतना अच्छा जब प्रभु हमें वरदान देता है तो हमें प्रलोभन से नाश करने की कोशिश क्यों करेगा। तो सुन लीजिए, ये सप्ताह आप प्रलोभन से गुजरेंगे। कृष्ण संतुष्ट करने वाला है, झूठ यही है, झूठ यही है जो हम अपने आप से कहते हैं कि कृष्ण काफी नहीं है, यीशु काफी नहीं है, यही झूठ है, यही प्रलोभन का फाउंडेशन है, यही है। कृष्ण कभी हमसे झूठ कभी कहे नहीं है और कभी कहेंगे भी नहीं, यीशु हर बार हमें संतुष्ट करेंगे, चाहे जितना भी बड़ा वेदना क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, यीशु हमें संतुष्ट करेगा, यीशु हमें उनके निकट ले आएगा, कभी कहीं नहीं जाएंगे, यीशु हमारे साथ अंत तक, यीशु हमारे साथ। अच्छी चीजें देते हैं हम, उदारता से देते हैं हमें, प्रलोभन में कभी हमें फंसाएंगे नहीं। और जब आप प्रलोभन से, सुन लीजिए, जब आप प्रलोभन से गुजरेंगे तो जरिया है वहां से निकलने का, और वो भी यीशु ही हमें देते हैं अनुग्रह के द्वारा, वो देंगे आपको। और ये भी याद रखे, जब भी आप पाप करते हो ना, बाहर समस्या नहीं था, अंदर था भैया समस्या। कई निर्णय लिए पाप को जन्म करने के लिए, कई निर्णय ले लिए, ऐसा ना कहे कैसे हो गया, ऐसा मालूम ही नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है। सोच समझ कर पूरे होशा आवाज में आपने पाप किया, और पाप क्या है, कृष्ण को बताते, करार करते आप, कृष्ण आप काफी नहीं है आज के लिए, आज के लिए आप काफी नहीं है, आज के लिए आप सुंदर नहीं है, आज के लिए आप सुनहरे नहीं है, आपका आज, आपका अनुग्रह, आपका दया हमारे लिए काफी नहीं है। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ। और बदले में हमें क्या मिलता है, कीड़े मकोड़े बिरयानी के नाम से। देखिए, कृष्ण के अलावा आपको कुछ भी संतुष्ट, हमको कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता। कृष्ण आने वाले हैं, उनके लिए हमें आज जीना है। जब वो आएंगे तो वो जरूर न्याय करेंगे, मगर यहां पर उनके लिए जीने के लिए हमें जो भी चाहिए, जो भी चाहिए। फिजियो राजपत्र कहता कि आपके आत्मिक जीवन के में जीने के लिए, आपके आत्मिक जीवन के प्रगति के लिए उसने आपसे कुछ भी नहीं रखा। जो कुछ आपको आपके आत्मिक बढ़ोतरी के लिए चाहिए, वो उदारता के साथ भरपूर रीति से प्रभु ने आपको दिया है। सोचिए इसके बारे में, कृष्ण हमारे आराधना के योग्य है, हमारे सारे जीवन का योग्य है, वही हमारे प्रभु, वही हमारे उद्धारकर्ता। ये प्रार्थना।